आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो बात आपको जाननी है वो मुझे पता होगी, और अगर पता भी होती तो मैं आपको बताऊंगी, वो भी तब जब आपके और आरवी का रिश्ता लगभग टूट ही चुका है। सॉरी सर, पर मैं अपनी दोस्त के सीक्रेट्स लीक करके उसको चीट नहीं कर सकती, इसलिए मैं आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। अगर पूछना है तो उसी से जाकर पूछ लीजिए, शायद वो आपको वो बात बता दे जो आप जानना चाहते हैं, पर यहाँ से तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। अब इसके लिए चाहे तो आप मुझे नौकरी से निकाल भी सकते हैं, जबकि ये मेरी ड्यूटी का पार्ट है नहीं। फिर भी अपना पर्सनल ग्रज निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, पर मैं एक नौकरी के लिए अपनी दोस्त को धोखा तो बिल्कुल नहीं दूंगी। रश्मि की बातें सुनकर शान की आंखें गुस्से से छोटी छोटी हो गई। उसने अपनी मुट्ठी को कस लिया और एक एक शब्द चबाते हुए गुस्से में पर धीमी आवाज में बोला, मिस रश्मि, कभी कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया कीजिए, आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके आसपास रहने वालों के लिए भी। और एक बात, मेरे और आरवी के रिश्ते पर कमेंट करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। ये हमारा रिश्ता है तो इसे कैसे संभालना है ये हम देख लेंगे, उसके लिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू नो व्हाट, मैं तुम्हें फ़ोन करता ही नहीं, गलती हो गई मुझसे। मुझे लगा था कि हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम है वो तुम्हारे लिए आरवी की ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होगी, पर मैं गलत था। सही कहा तुमने, अगर मुझे आरवी के बारे में जानना है तो उससे पूछ लेना चाहिए, मैं ऐसा कर भी सकता हूँ और यकीनन उससे पूछने पर मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पर अगर मैं डायरेक्ट आरवी से नहीं पूछना चाहता तो उसकी कोई तो वजह होगी। मैं उससे नहीं पूछना चाहता था इसलिए तुम्हें फ़ोन किया, जबकि तुमसे बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बात जानना मेरे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होगी और आरवी से ना पूछने की वजह कितनी बड़ी होगी। मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बल्कि अपने ईगो को साइड करके तुम्हें फ़ोन किया था, सिर्फ और सिर्फ आरवी के लिए। पर गलती हो गई मुझसे, नहीं करना चाहिए था तुम्हें फ़ोन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, आरवी से मुझे वो बात पूछनी पड़ती जिससे उसके पुराने जख्म हाले होते, उसको तकलीफ़ होती, पर तुम्हें इससे क्या। खैर, तुमसे अब मुझे कुछ नहीं कहना और ना ही कुछ जानना है। तुम्हारा कीमती वक्त पर बात किया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जाकर अपने काम करो जो शायद तुम्हारे लिए आरवी और उसकी ज़िंदगी से कहीं गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। शान नाराज़गी से बोलता ही चला गया। इस दौरान वो भूल ही गया था कि अभी उसने अपनी कैसी इमेज बनाई हुई है सबके सामने। जाने अनजाने आरवी के लिए परवाह जाहिर कर गया, जिससे रश्मि हैरान रह गई थी। शान ने इतनी संजीदगी से अपनी बात कही कि रश्मि बस सुनती ही रह गई। पल पल उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। जिस तरह से शान बात कर रहा था वो काफ़ी सीरियस लग रहा था, मतलब बात बहुत बड़ी थी। शान ने जैसे ही अपनी बात कहकर फ़ोन काटना चाहा, दूसरी तरफ से रश्मि तुरंत ही बोल उठी, आपको आरवी की फ़िक्र हो रही है, क्यों? आप तो नफ़रत करते हैं ना उसे, तो उसकी ज़िंदगी आबाद हो या बर्बाद आपको इससे क्यों फ़र्क पड़ रहा है? क्यों जानना चाहते हैं आप उसकी ज़िंदगी से जुड़ी बातें जब आप उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं मानते? जब आप खुद उसको अपनी बातों और हरकतों से हमेशा तकलीफ ही देते हैं तो आप इतने बेचैन क्यों हैं उसके लिए? जब आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता तो क्यों परेशान है उसके बारे में सोचकर? क्यों उसे तकलीफ़ ना हो, उसके पुराने ज़ख्म हरे ना हो, इसके लिए आपने अपने ईगो को साइड करके मुझे फ़ोन किया? जवाब दीजिए मुझे। अगर आपने मेरे इन सवालों के जवाब दे दिए तो आप जहां बुलाएंगे मैं अभी इसी वक्त वहां आ जाऊंगी और आपके सभी सवालों के जवाब भी दूंगी। रश्मि अब चुप होकर अपने सवालों के जवाबों का इंतजार करने लगी। उसके चेहरे पर गंभीर भाव मौजूद थे। शान की बातों से जो सवाल उसके मन में जन्मे वो सभी उसने शान से पूछ लिए और उनके जवाब के बदले शान से मिलने और उसके सवालों के जवाब देने का ऑफर भी दे दिया, जिसका फ़ायदा अगर शान चाहता तो उठा सकता था, पर रश्मि के सवालों के जवाब देने का मतलब होगा कि जितनी मेहनत उसने अब तक की है खुद को आरवी और बाकी सबकी नज़रों से गिराने की, वो अब बर्बाद हो जाएगा। बाकियों का तो छोड़ भी दे, पर अगर रश्मि को सच्चाई बताता है तो वो आरवी को ज़रूर बताएगी, और यही वो नहीं चाहता था। उसकी नज़रों में अच्छा नहीं बनना चाहता था वो। उसे खुद से दूर रखने के लिए उसकी नज़रों में गिरना ज़रूरी था ताकि वो नफ़रत करे उससे। शान रश्मि के सवालों से उलझन में फंस गया। अपने सवालों का जवाब जानना बहुत ज़रूरी था, उसके लिए नहीं, आरवी के लिए, ताकि विहान के चैप्टर को उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए क्लोज कर सके। पर रश्मि के सवालों के जवाब भी नहीं दे सकता था वो। कुछ देर तक वो दोनों बातों के बीच उलझा रहा, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए सख्त लहजे में बोला, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। वैसे भी ये मेरा और आरवी का पर्सनल मैटर है, मुझे उसकी परवाह है या नहीं ये जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। पर इतना जान लो कि अगर आज तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए और आरवी के साथ कुछ गलत हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी, और उसके लिए तुम खुद को शायद माफ़ भी कर दो पर मुझसे तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। वैसे अजीब बात है ना, तुम दावा करती हो कि दोस्त हो उसकी, दुनिया में सबसे ज़्यादा उसकी फ़िक्र तुम्हें ही होती है। मैं तो नफ़रत करता हूँ उससे, मुझे उससे रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी आज जब उसको तकलीफ़ से बचाने की बारी आई, अपनी दोस्ती निभाने की बारी आई, तो तुमने अपनी दोस्ती को शर्तों पर तोल दिया। फिर तो तुम्हारी दोस्ती से बेहतर मेरी दुश्मनी ही हुई। कम से कम मैंने शर्तों पर उससे कोई रिश्ता तो नहीं जोड़ा। खैर जाने दो, मैं तुम्हें तुम्हारी किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, तो अगर बदले में तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब ना देना चाहो तो इट्स ओके। शान ने अपनी बात खत्म की पर फोन नहीं काटा। उसने जानबूझकर ऐसी बातें कहीं रश्मि से ताकि वो अपने सवालों के जवाब ना मिलने पर भी आरवी के लिए उससे मिलने को तैयार हो जाए, और अब वो रश्मि के जवाब का ही इंतजार कर रहा था। रश्मि कुछ देर तक गहराई से शान की कही बातों के बारे में सोचती रही। बहुत सी बातें चल रही थी उसके दिमाग में। अपने सवालों के जवाब चाहती थी तो आरवी के लिए, पर उसे ही तकलीफ में नहीं डाल सकती थी, इसलिए काफी सोचने के बाद उसने गंभीर लहजे में कहा, वैसे आपने जवाब ना देकर भी मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दिए। अब मुझे आपसे किसी जवाब की जरूरत नहीं, क्योंकि शर्तों पर रिश्ते मैं भी नहीं जोड़ती, और ना ही आपकी तरह डबल फेस लेकर घूमना आता है मुझे। जैसी हूँ सामने हूँ। अगर किसी से नफरत है तो है, उसके सामने नफरत का दिखावा और पीठ पीछे फिक्र नहीं कर सकती मैं, पर आप माहिर लगते हैं इसमें। लेकिन अफसोस कि मैं आपके उस डबल फेस को पहचान गई हूँ, और सवाल तो अब भी बहुत हैं। खैर छोड़िए, अब नहीं पूछूंगी आपसे कुछ भी। एड्रेस भेज रही हूँ, मिलिए। देखते हैं ऐसा क्या जानना है आपको आरवी के बारे में, जिसके लिए आपने ये जानते हुए कि मैं आपको पसंद नहीं करती और मुझे फोन करने का मतलब है अपनी इंसल्ट करवाना, फिर भी मुझे फोन कर दिया। रश्मि ने अपनी बात पूरी की और बिना शान के जवाब का इंतजार किए फोन काट दिया। उसकी बातें सुनकर शान शॉक्ड रह गया। इतने में फोन कट गया और रश्मि का मैसेज भी आ गया। शान ने सर झटका और अपने कैबिन से बाहर निकलते हुए कार्तिक को फोन लगा दिया। दो तीन रिंग के बाद कार्तिक ने कॉल रिसीव कर लिया, पर वो कुछ कह पाता उससे पहले ही शान ने उस पर लगभग भड़कते हुए कहा, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, फिर सैलरी किस बात की लेते हो तुम? बेचारे कार्तिक की तो आंखें काटी की फटी रह गईं। वो चौंकते हुए अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और घबराकर बोला,
सर क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कौन सा काम मैंने ठीक से नहीं किया? कार्तिक के सवाल सुनकर शान ने लंबे लंबे डग भरकर ऑडिटोरियम से बाहर निकलते हुए गुस्से से कहा, मैंने कहा था तुमसे कि उस विहान बजाज पर नजर रखना, उसकी हर खबर मुझे सबसे पहले मिलनी चाहिए, पर तुमसे मेरा इतना सा काम ठीक से नहीं किया गया। वो इंडिया लौट आया और मेरा नंबर निकालकर मुझे फ़ोन भी कर लिया, पर तुमने मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी। शान की बात सुनकर कार्तिक का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। वो खुद उसकी बात सुनकर चौंक गया था और अब शान के गुस्से की वजह भी जान गया था, और उसको अंदाज़ा था कि उससे बहुत बड़ी लापरवाही हो गई है, जिस पर शान बहुत नाराज़ है, और उसका गुस्सा जायज़ भी था। बेचारे कार्तिक की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई उसकी बात सुनकर। उसने लगभग मिमियाते हुए कहा, सॉरी सर, मुझे खुद इस बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। आपके ऑर्डर के मुताबिक मैंने अपने आदमियों को उसके पीछे लगाया था, पर 5 महीने तक वो वहाँ शांति से था, इसलिए शायद हमारे आदमी रिलैक्स हो गए होंगे। मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। वो तो मैं खुद लूँगा, पर फिलहाल तुम अपने खास आदमी को बोलो कि विहान की हर मूवमेंट पर नज़र रखे, उसके पल पल की खबर चाहिए मुझे। और सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर उस रूम में ऐसी जगह कैमरे फिट करवाओ कि पूरे रूम में जो भी हो वो सब उनमें रिकॉर्ड हो जाए। इस काम में मैं ज़रा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा, जो कहा है वो ठीक से हो जाना चाहिए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर ये काम भी तुमसे ठीक से नहीं हुआ तो कल खुद अपना रेजिग्नेशन लेटर दे जाना मुझे। शान ने तो उसको सीधे धमकी ही दे दी, जिसे सुनकर कार्तिक की हालत टाइट हो गई। उसने तुरंत ही हामी भरते हुए कहा, सॉरी सर, अब कोई गलती नहीं होगी, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा, मैं अभी सब इंतज़ाम करवाता हूँ और मैं खुद जाकर सब चेक करूँगा, आप फिक्र ना करें। शान ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन काटते हुए अपनी कार में बैठ गया। अगले ही पल कार तेज़ी से वहाँ से निकल गई। फ़ोन कटने के बाद कार्तिक ने रुमाल से अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को पोंछा और बेचारगी से सर हिला दिया, फिर किसी को फ़ोन लगाते हुए वहाँ से बाहर निकल गया। शान की गाड़ी हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। 15 मिनट के अंदर उसकी गाड़ी उस जगह पहुंच गई जहां रश्मि ने उसको बुलाया था। उसने कार पार्क की और अंदर जाकर निगाहें घुमाई। सबसे कोने में बैठी रश्मि पर नज़र पड़ते ही वो तेज़ कदमों से उसकी तरफ बढ़ गया। रश्मि अपने फ़ोन को उंगलियों के बीच घुमाते हुए उसी का इंतज़ार कर रही थी। शान आकर उसके सामने बैठ गया। दोनों का रिश्ता इतना अजीब था कि वो समझ ही नहीं सके कि आखिर बात शुरू कैसे करें। ना उनके बीच कोई हाय हेलो हुआ और ना ही उन्होंने एक दूसरे को देखकर स्माइल ही पास की। To be continued.